ವಂದೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ವಂದೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ವಂದೇ ಭೋಗಿಲಾಂಛಿತ ಯೋಗಿವಾಂಛಿತ ಚರಣಪದಂ ವಂದೇ ವಂದೇ.
ईसा को इसलिए नहीं भेजा गया था कि वे प्रभु की क्षमा और प्यार का जयकार करें, वरन उन्हें तो विश्व से पाप दूर करने थे. उनका काम जारी था. ईश्वर चाहते थे कि मानव के पाप कर्म से टूटा बिखरा इस विश्व का रूप सुधारा जाए. ईसा इस विकृत समाज का इलाज मात्र नहीं है, परंतु ईसा के द्वारा ईश्वर ये कहना चाहते थे कि मनुष्य उनकी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है. ईसा को उन्होंने सब मानवों में महान बनाया. उन्हीं के द्वारा उन्होंने विश्व की सृष्टि की.
पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मूर्छा लगता है कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं. स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता है न कीड़े खाते हैं और न ही चोर सेंध लगाकर चुराते हैं. क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा.
ईसा ने लोगों से सांसारिक वस्तुओं के बजाय आध्यात्मिक वस्तुओं को इकट्ठा करने को कहा. ये आध्यात्मिक वस्तुएं हैं प्रेम, ईमानदारी, सेवा, विनम्रता और धार्मिकता तथा सदाचरण. बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इन चीजों पर अपना महल खड़ा करता है, जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी खोती नहीं, चाहे जीवन में कैसे भी पल क्यों ना आए.
आंख शरीर का दीपक है. यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा. किंतु यदि तुम्हारी आंखें बीमार हैं तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा. इसलिए जो ज्योति तुम में है यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा.
ईसा के ये कथन मानव की सादगी को दर्शाते हैं. अक्सर मानव दूसरों के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो जाता है, जो उसके न्याय अथवा आंकने की प्रवृत्ति में बाधा लाता है और वो महत्वपूर्ण तत्वों को भी अनदेखा करता है. इसलिए आंख दूसरों को देखने व परखने के मानव नजरिए का प्रतीक है. मानव स्व परीक्षण करे व अपनी कमजोरी को महसूस कर इनसे बच सकता है. दूसरा मुख्य तत्व है ईर्ष्या, जो कि सत्य व महत्वपूर्ण तथ्यों से मनुष्य को अंधा कर देती है. और तीसरा है अंधकार, जिसकी वजह से मनुष्य स्वयं को नहीं देख पाता कि वो किसी काम को करने में सक्षम है या नहीं. यदि मनुष्य बुद्धि विवेक के अलावा सभी तरफ से अंधा है तो उसे अपनी गलती का भी एहसास नहीं होगा, जिस प्रकाश में वो स्वयं तथा दूसरों को देखेगा वो अंधकार पूर्ण होगा. ईसा अभी लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया.
गुरुवर, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी.
ठीक है, चलो.
ओह, ईसा तो जा रहे हैं,
अब वो मुझे चंगा कैसे करेंगे? क्यों ना मैं भी भीड़ में चली जाऊं? हाँ, वहीं जाती हूँ। उनसे बात ना भी हो सकी तो क्या, उनका कपड़ा भर छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 12 बरसों का ये रक्त स्त्राव ईसा के कपड़े छूने भर से दूर हो जाएगा। हाँ, मैं वहीं जाती हूँ।
ए स्त्री, कहाँ जाती है?
मुझे बस उनका कपड़ा भर छूना है, मैं चंगी हो जाऊंगी।
पागल हो गई है क्या? कपड़ा भर छूने से भला चंगी कैसे हो जाओगी? जब तक वे तुम्हें आशीर्वाद ना दे, तुम पर प्रार्थना ना करे?
मुझे विश्वास है मैं चंगी हो जाऊंगी।
किसने मेरा कपड़ा छुआ?
गुरुवर, मैंने। स्वामी, 12 साल से रक्त स्त्राव से पीड़ित थी, मेरा विश्वास था कि मैं आपका कपड़ा भर छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी।
बेटी, धैर्य रखो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हट जाओ, विलाप न करो, लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है।
वो मर चुकी है गुरुवर, और आप कहते हैं वो सो रही है?
बेटी, उठो।
उस बच्ची को जीवन देकर ईसा ने ये सिद्ध कर दिखाया कि ईश्वर के लिए मृत्यु नहीं, जीवन महत्वपूर्ण है, और हर एक व्यक्ति को वे जीवन जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। जीवन जो कि प्रेम, आशा व शांति से पूर्ण हो। ईश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार की रक्षा करने व इसको पाप से बचाने भेज दिया। ईसा ने लोगों से पाप के रास्ते छोड़ने व अपना जीवन व्यवहार सुधारने पर बल दिया, ताकि वे ईश्वर की कृपा पा सकें। ईसा लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता को दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारे सीरिया देश में फैल गया। गलीलिया, डेकोपोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। ईसा ये विशाल जनसमूह देख पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठकर सबको अपने पास बुलाया और लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगे,
धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया।